ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद, ओम आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम। गति सदगति दाता बाबा, हम बच्चों को सदा स्वस्थति स्वयं का स्वभाव, उसमें संस्कार भी साथ, और सेवा क्या है, परिस्थिति में स्वस्थति कैसे रहनी चाहिए, स्वमान किसको कहा जाता है, रूहानी नशा क्या है, असली खुशी क्या है, फरिश्तों वाली खुशी किसको कहा जाता है। तो आज बाबा हम बच्चों को न्यारा प्यारा बनने की, अच्छा फरिश्ता होकर के रहने की, साक्षियों करके सृष्टि की स्थिति को देखने की, स्वस्थिति स्वमान और सेवा, इस पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। और सदा ही अतीन्द्रिय सुख का झूला झूलते रहे, अंदर मन प्रसन्न होगा, संतुष्ट होगा, स्थिति सेंसिटिव नहीं होगी। सेंसिटिव यानी जिसको कहते हैं जल्दी चोट लग जाती है, जिसको बाबा ने शब्द बोला कोमल, कोमल स्वभाव तो अच्छा है, पर कोमल का मतलब जल्दी मुरझा जावे, हाँ वो सेंसिटिव नहीं बनना है, सेंसिबल बनना है, परिस्थिति में स्वस्थिति, एक रस अवस्था, जैसे कल परसों कहा रूहानी रस पीते रहो, अवस्था एक रस रहेगी, सोम रस पीते रहो तो अवस्था एक रस रहेगी। अभी तो समय आ गया है वापस घर जाने का, तो फरिश्ता बन के ही जाना होगा, और आज फरिश्ते का मतलब ये है कि जो हमारा पर्सनल रिश्ता 2500 साल पहले से जुटा, देवभान में आकर के हमारे सूक्ष्म संस्कारों का परिवर्तन, विकारों का प्रभाव, जिसको कहा जाता है अर्दली या एनिमल इंस्टिंक्ट, पार्श्विक वृत्ति, तो विकारों का शिकार करना है। जिसने विकारों का शिकार कर लिया वो निर्विकार राजा, क्योंकि विकारों से ही हमारा रिश्ता दूसरे रिश्तों के करके बंधन को बांधता है। तो इसलिए निराकारी निर्विकारी स्थिति, सिंप्लिसिटी, बहुत सारी बातें, और साथ साथ खुशी भी बहुत। हमारे तो नई दुनिया स्थापन हो रही है, हम सुखधाम स्थापन कर रहे हैं। कल कहा मेरे साथ तुम नई दुनिया की स्थापना करने में मददगार हो, तो इसलिए जॉब ठीक करना है, अपना जॉब भी करना है। और हम हंटर हैं, किसको हंट करते हैं, अंदर की पार्श्विक वृत्ति को, विकारी वृत्ति को। हर जानवर का विकार अलग अलग पावर वाला अथवा वृत्ति वाला होता है, तो उन वृत्तियों का शिकार करने वाले को मालूक कहा जाता है, मलूक कहा जाता है अथवा फरिश्ता कहा जाता है। मेरवा मौत मलूक का शिकार, राजा को मजा आता है शिकार करने में, जानवर की मौत हो जाती है, हिरण मर जाता है, शेर का शिकार कर लेते हैं, आनंद में रहते हैं। तो आज ये मतलब है मेरवा मौत मलूक का शिकार। शिकारी को आनंद आता है, जानवर की मौत हो जाती है। अच्छा, 16 तारीख की मुरली में, 16 मई की मुरली सुनते ओम शांति। मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। प्रश्न है कौन सा नशा, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति, स्वस्थिति फर्स्ट क्लास रहेगी। उत्तर है निरंतर नशा रहे मेरवा मौत मलूक का शिकार। हम मलूक अथवा फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। अब सब खलास, बाकी तो सब खलास होना ही है। हम अपनी इस पुरानी खाल को भी छोड़ के जाएंगे, नहीं लेंगे। ये सारा ज्ञान बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। गीत है ये, कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आया। ये दो प्रकार के गीत है, ये कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। आंख न जाने दिल पहचाने, मूर्तियां ये कैसी, निराकार है नजर तो आता नहीं। याद करूं तो याद न आवे, सूरत या ये कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए। देखा है, जानते भी हैं कौन आया है। तो कौन आया सवेरे सवेरे, सवेरा बनाने अंधेरा मिटाने। ओम शांति। ये किसने कहा, कौन आया, किसने पहचाना? बच्चों ने। अतीन्द्र सुख जीवन में आकर के कहते हैं कि बेहद का बाप आया हुआ है। इसलिए इस पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी, पावन दुनिया बड़ी है या पतित दुनिया बड़ी है? यहां बड़ी का मतलब हाईएस्ट नहीं, ऊंची नहीं। बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। रावण का परिवार बहुत बड़ा है, तो ये रावण की बड़ी दुनिया है। सतयुग की पॉपुलेशन बहुत कम होगी। पतित दुनिया कितनी बड़ी है, ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। बड़ी किस लिए, कितने करोड़ों मनुष्य हैं, अभी तो अरबों के ख्याल में करोड़ भी नहीं, इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। इसका मतलब पॉपुलेशन में हाईएस्ट और इम्प्योरिटी में लोएस्ट। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए, हमारी दुनिया कितनी छोटी होगी और हम कैसे राज करेंगे। हमारे भारत जैसा देश कोई हो नहीं सकता, ये कोई नहीं समझते है। भारत देश हमारा, वैसे तो जगह जगह बोर्ड लगा रहता है विदेश में, इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, नशा तो रहता है। ये कोई नहीं समझते कि भारत स्वर्ग था, उस जैसा देश कोई हो नहीं सकता। तुमको अब समझ में आता है, वही भारत, यही जो इतना ऊंचा था, अब कोई काम का नहीं है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है, ये किसको भी याद नहीं आता है। हमारा भारत सबसे ऊंच है, सबसे प्राचीन है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है, सो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, अपने भारत के लिए इतनी खुशी रहती है, इतनी रेस्पेक्ट रहती है, रिगार्ड रहते है, किस बात का, उसकी प्योरिटी, डिविनिटी, रॉयल्टी रहते है, रेस्पेक्ट। बेहद का बाप आया हुआ है, कलप पलप आते है, माया रावण ने जो हमारा राजभाग छीन लिया था, हम आत्माओं को फिर से अपना राजभाग बाबा आकर के देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई ने लड़ाई से छीना है, नहीं, रावण राज में हमारी मत बुद्धि, हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती है। श्रेष्टाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। देखो दुनिया कितनी बढ़ गई, भ्रष्टाचार भी बढ़ा, भ्रष्टाचार के कारण पॉपुलेशन भी बढ़ी। हमारा भारत देश कितना छोटा था, कितना ऊंचा था, उसका कितनी रिगार्ड रखना चाहिए, और अब परिवर्तन करना है, उसको लोएस्ट को हाईएस्ट बनाना है, तो कितनी जिम्मेवारी चाहिए। स्वर्ग में कितने हम सुखी रहेंगे, हीरे जवाहरातों के महल होंगे, वहां रावण होता नहीं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए और अति इंद्रिय सुख में रहना चाहिए। अति इंद्रिय सुख का नाम ही है वास्तव में परमानंद, वो अंदर आनंद है, अनएंडिंग खुशी है, डिफरेंट प्रकार की खुशी है, अनंत खुशी है, उसको अति इंद्रिय सुख कहते। इंद्रियों का सुख नहीं, वो तो पॉम्प एंड शो, कल बाबा ने एक्सप्लेन कर दिया, रावण का पॉम्प एंड शो, रावण राज में खुशी है पर खुशी है नहीं। बाप कहते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट है अपने पर अटेंशन देने का, खुश भी रहना है पर अपने पर अटेंशन, देही अभिमानी बनो, दे अभिमान, देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था 100 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो, 100 पैचेस वाला कपड़ा पहनो। हम दीदी जी के साथ रहे, पले भी दीदी जी के, तो दीदी के ब्लाउज थोड़े फटे हुए थे। हम संभालते दीदी को, दीदी मनमोहिनी दी। मैंने दीदी को कहा, दीदी अब ये ब्लाउज जो है इसको निकाल देवे ना, ये तो कितना गला हुआ है, फटा हुआ है। कहती है फटा हुआ है तो क्या है, पीछे ही तो है, चत्ती लगा देंगे, पैच वर्क कर देंगे ना। कितनी बैकग्राउंड, कितनी शाही। अब तक भी उनकी जो उनके मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन भी जो है, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी बादशाही है लंदन में, उनकी अच्छे प्रॉस्परस है। परंतु नशा, सिंप्लिसिटी, क्यों कि बाबा को भी सिंपल थे बिल्कुल। तो बाबा भले, ब्रह्मा बाबा भले बड़े आदमियों से अथवा जवाहरियों से कनेक्शन था, वो नशा टूटे कैसे? तो सिंपल जीवन, देह अभिमानी बनना पड़े। हम आत्मा है, ये शरीर तो पुराना है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प तो एक खल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, तो तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, ये पुरानी खल छोड़ हम दूसरी नई लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। तो ये सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। ये तो छिछी दुनिया है, इनको देखते भी बुद्धि से भूलना पड़ता है। कैसे भूलें? हम यात्रा पर जा रहे हैं, तो जितना जितना न केवल यात्रा पर जा रहे हैं, कल तो कहा कि तीर्थ बन रहे हो आप, चलता फिरता तीर्थ, हर सेंटर तीर्थ स्थान है, यात्रा पर जा रहे हैं। और अभी हम घर जा रहे हैं, हमारा बुद्धि योग घर तरफ जा रहा है। अभ्यास करना पड़े ना, ये शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है। साक्षात्कार कर लिया, पुरानी दुनिया को तो अच्छी तरह से दर्शन कर लिया ना, अनुभव कर लिया ना। अब देह और देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है, खुशी होती है, हमको वापस जाना है, बुद्धि योग वहां लगाना है। एक दो को यही सुनाना है, याद कराना है, मन मना भव, ये बड़ा जबरदस्त मंत्र है। और इसी को बाबा ने कहा, मन मना भव निरोगी बनाने के लिए कौन सा शब्द दिया? मन मना भव को इंजेक्शन है। रोग जो अंदर आत्मा को लगे हुए हैं, मन मना भव आज का मंत्र इंजेक्शन, जबरदस्त मंत्र है। बल गीता तो बहुत पढ़ते रहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे पढ़ लेते हैं, ये किसी की बुद्धि में नहीं आएगा कि हम राजयोग भले गीता पढ़ते हैं, हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। तो बाबा अब समझा रहे हैं, बहुत गई, बाकी थोड़ा समय है, ये पुरानी दुनिया दुखमय दुनिया गई, बाकी थोड़ा समय है, ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में आना है। तो पुराना सब खलास होना है। निर्वा मौत मलूक का शिकार, हम मलूक बन अपने माशुक के साथ घर जाएंगे। ये आत्माओं को बाप बैठ शिक्षा देते, ये है साधारण ब्रह्मा बाबा, ये भी साधारण परंतु ऊंचे से ऊंचा है। बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, कलप कलप आते हैं, ये तो छीछी दुनिया है। ऐसी ऐसी बातें अपने आप से करनी चाहिए, विचार सागर मंथन चलना चाहिए। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, हम भारतवासियों ने जप तप आदि किए, जितना हमने किए और कोई ने नहीं किए। भक्ति भी हमने शुरू की, जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने ही भक्ति की और वही ज्ञान योग में तीखे जाएंगे। क्यों? क्यों उनको फिर पहले नंबर में आना है। ज्ञान योग में तीखे जाना माना स्पीड फर्स्ट, पहले जाना है और फरिश्ता स्वरूप बंधन मुक्त। तुम बच्चे जो सुरानी सर्विस में लगे हो उनके लिए तो सच में बहुत अच्छा है, तुम सचमुच भट्टी में बैठे हुए हो, बैठे हैं भट्टी में। अच्छा, भट्टी में जो आज आए हुए हैं कौन कौन आए हुए हाथ उठाए। अच्छा, हम नहीं है भट्टी में बैठे हुए, ये भट्टी तो है। ये सब संबंध, भट्टी का मतलब सब संबंध टूटे हुए हो, ग्रस्त व्यवहार में रहते यही सुनते सुनाते रहना है, तो पुराणों से भी तीखे जा सकते हो। देखा जाता है नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं, तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा स्टेज उनकी। कोई कोई पुराने से कंपेयर करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। पहले पहले जब यज्ञ में थे तो तुम्हारी माला बनाते थे, उसमें उनकी स्टेज अनुसार उनको 108 आने आने वालों को नंबर मिलता था, यानी बाकी लोग सर्टिफिकेट देते थे विचार का, व्यवहार का, संस्कार का, स्वस्थिति का, संबंध का नंबर मिलता था कि ये फरिश्ता बनने की स्टेज में कितना आगे है। अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले भी निकल गए, यानी वो नंबर बदल गया लापरवाही के कारण या भट्टी में न रहने के कारण। तो पहले पहले माला बनाते देना, 3-4 नंबर लेते भी एकदम प्रजा में पड़े तो अपनी स्टूडेंट लाइफ पर ध्यान देना है। पढ़ाई पढ़ रहे हैं भले पीछे आए आगे जा सकते, तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है। ग्रस्त व्यवहार में रहते साथ साथ ये कोर्स पढ़ते हो, बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है, तो तुम्हारा कोर्स है ग्रस्त व्यवहार में रहते ये पढ़ाई पढ़ना। इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए, कन्याओं को तो कोई बंधन नहीं है, कन्याओं के कारण ही कन्हैया बा गोपाल नाम गाया हुआ है। माताओं के कारण गोपाल और कन्याओं के कारण कन्हैया, या तो गोप भी, तो गोप और गोपियों के कारण श्री कृष्ण को गोपाल कहते हैं और कन्या के कारण कन्हैया कहते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग में है ना, गोप और गोपियां गुप्त पुरुषार्थी। तो तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, ये लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज कर, ये शिव लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग है राज्य करते थे, ये तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं, कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये तो फर्स्ट क्लास पढ़ाई है, उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं श्री लक्ष्मी नारायण के आगे, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम पापी कपटी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। उसमें था हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप पे ही तरस पड़े, आपको ही तरस पड़ा है। ये है सिंध ग्रंथ साहब के शब्द है। तो बाबा कहते हैं अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, वह कृपा नहीं करनी है, यानी हमारे पर कृपा करो और हमारे विकार छूट जाए। मैं पापी मूर्ख हूं, मुझे बुद्धि दो। खल मैंने दुष्ट, खल देहाभिमानी, देहाभिमान की तरफ, खल की तरफ आकर्षण वाला, दुष्ट हूं, बुद्धिहीन हूं, जो शरीरों पर आकर्षित हो जाता हूं, कामी विकारी हूं। तो फिर विषय विकार मिटा हुआ तो बाप कहते हैं बाप से नहीं मांगो तरस व कृपा, वास्तव में तरस मर्सी व कृपा अपने ऊपर करनी, अपने पर कृपा करो, रहम करो अपने आप पर। तुम ही तो देवता थे, अब क्या बन गए हो, अपने को देखो, चेक करो अपने आप को, फिर पुरुषार्थ करके देवता बनो। श्याम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो तो भक्ति मार्ग में कहते थे, मरते थे फलाने की कृपा हुई बच गए, कोई बहुत बीमार है कहां से आशीर्वाद मिला, कहते हैं ये तो बच गए इनकी कृपा से, उनकी आशीर्वाद से। महात्मा आदि के हाथों को, हाथ को पकड़ करके नहीं सिर पर रखवाते, बहुत अब भी बहुत भगत आते हैं, कहते हैं हमारे सिर पर हाथ रखो कृपा करो, हाथ हाथ पकड़ कर कहेंगे आपकी आशीर्वाद चाहिए, यहां आशीर्वाद की बात नहीं है, यहां तो अपने पर कृपा करो, अपने पर आशीर्वाद ब्लेसिंग दो, पढ़ाई पढ़ो, यहां तो पढ़ाई की बात है, कृपा आदि की बात नहीं है। मन मना भाव का अर्थ है ना, तो मन मना भाव, मन मेरे से ही लगाओ। अगर राजा बनना है सतयुग का, डिले नहीं करना है, तो मन को मंत्रा नहीं बनाओ, वो मंत्रा फिर क्यों क्या कही किसने कही कब कही, मंत्रा का कही बन जाती है मन, वो राज 14 साल डिले हो जाता है, मिलता तो राम को ये है। इसी बीच में टेस्ट भी बहुत आते हैं, तो कृपा की कोई बात नहीं है, मनमना भव के मंत्र को पक्का करो। अनेक प्रकार मंत्र भी बहुत देते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं, हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। हठ योग के सैंपल देखने हो तो जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो, वो लौकिक म्यूजियम था तो बाबा ने इसीलिए कॉन्ट्रास्ट के लिए पहला म्यूजियम जयपुर में खुलवाया था। तो उसमें सारे बहुत पोज़ेस हैं हठ योग के, तो वो जाकर के देखो। यहाँ तो कितने तुम आराम से बैठे हो, कोई हठ योग थोड़ा करे। पर बुद्धि योग बाप के साथ रहे, बाबा हमको फिर से राज दे रहे हैं, हम राज योग सीख रहे, वहां ही न केवल राज दे रहे हैं पर देवता धर्म भी दिव्य भी बना रहे हैं, देवता बना रहे हैं, वहां ही अद्वैत देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। दो हाथ की ताली बजती है, कॉन्फ्लिक्ट होता ही है, जब दो वहां तो एक धर्म है, एक धर्म है तो मारामारी नहीं है। अभी भी है कलयुग, अभी कलयुग है, कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी। अभी तो मनुष्यों की बुद्धि, मनुष्यों की वृद्धि कितनी होती रहती है, पर भारत की धरती तो नहीं बढ़ती ना। जो भारत की लैंड है वो तो उतनी है, जो कॉन्टिनेंट के हिसाब से जितना हिस्सा भारत का है उतना ही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं, वहां मनुष्य बहुत कम होंगे। दुनिया तो यही होगी ना, दुनिया कोई छोटी बड़ी नहीं हो जाएगी। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए, किस बात की बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि हमको अच्छा रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए कि हम अपना योग बल से अपना राज स्थापन कर रहे हैं बाप की श्रीमत पर। जिम्मेवारी हमारी है, मत बाबा की है। तो श्रीमत मन मना भव और श्रीमत बुद्धि योग बाबा के साथ। बाप कहते हैं मां में कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे, आत्मा में ही खाद पड़ी है ना। सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, पर ये नहीं दिखाते कि आत्मा में खाद पड़ी है। गोल्डन एजेड थे, प्योर सोना थे, फिर सिल्वर मिक्स हो गया, सिल्वर एज कहा जाता है, प्योरिटी कम हो गई, क्वालिटी कम हो गई, और फिर जो कम्युनिटी, जैसे जो सूर्यवंशी के बदले चंद्रवंशी हो गए, तो अंग्रेजी अक्षर कितना अच्छा है, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, फिर आयरन एज। गोल्ड जो है उसको वायुमंडल का असर नहीं पड़ता, चांदी काली हो जाती है हवा, तांबे में दाग पड़ जाते, अंदर चला जाता है उसके, असर, लोहे में जंक लगता है, बहुत गहरा चला जाता। खोट, इसीलिए गोल्डन सिल्वर कॉपर है। तो बाप कहते हैं, इसलिए अंग्रेजी अक्षर अच्छे है। बाप समझाते हैं, आत्मा में खाद पड़ी है और वो निकले कैसे? सत्तो से तमो बन गई है, अब तमो से सत्तो कैसे बने, फिर से पवित्र कैसे बने? समझते हैं गंगा में स्नान करने से सत्तो प्रधान बन जाएंगे, पवित्रता और सत्यता परफेक्ट स्टेज पर पहुंच जाएगी। परंतु गंगा में स्नान करने से ये नहीं, स्वच्छ शुद्ध पवित्र पावन नहीं बनती है। गंगा स्नान तो रोज करते रहते हैं, कोई तो नियमी होते हैं, नियम से गंगा में या नहर में जाके स्नान करते हैं। और ये फिर खास करके कार्तिक महीना होता है, तो अगर नहर नहीं है तो गांव में कुएं तो होते हैं, घर में स्नान न करके नलके में कुएं के पानी से। हमको याद है हमारी दादी हमको कहती थी, ले जाती थी साथ में, कहती थी अगर सितारे बहुत हैं आकाश में, अभी अंधेरा है पर तारे बहुत हैं, तो अगर उस समय चलेंगे साथ, अमृत वेला मतलब, तब जाके चलोगी मेरे साथ और स्नान करेंगे कुएं का पानी लेके, तो तुमको गोल्डन बाल्टी मिलेगी। फिर थोड़े तारे रह गए, फिर किया तुमने, तारे हैं पर अभी सूरज नहीं चढ़े, सिल्वर की बाल्टी मिलेगी। फिर और तारे आ गए तो मिच गए, सूरज चढ़ने लगा पर चढ़ा नहीं, तो तांबे की बाल्टी मिलेगी। और सूरज चढ़ गया और फिर उठ के स्नान किया, प्लास्टिक की बाल्टी मिलेगी। मतलब भाव ये था कि यानी, और हम जाते थे, हमको शौक होता था, हम तो गोल्डन बाल्टी में स्नान करेंगे, गोल्डन बाल्टी के पानी में स्नान। अभी समझ में आता है कि वो हमारी बुद्धि ये गोल्ड हो जाएगी, तो इसमें इसी में ज्ञान स्नान करेंगे। बाबा के ज्ञान बुद्धि को शेरनी का दूध, बुद्धि को गोल्ड बनाता है। या फिर नहर पर जाते थे, जब जहां दूसरे स्थान पर गए तो वहां गंगा बहती थी और छोटा नहर भी था, नहर में स्नान करते मैं डूब गई। छोटी थी, 5-7 साल की थी तक, तो वहां पर एक माता इस कपड़े धो रही थी, मेरी चोटी पकड़ करके उसने बाहर निकाला। तो ऐसे ही भाई कई ऐसे डूब जाते हैं तभी तो निशानी है, तो हमारे को बाबा ने चोटी पकड़ करके वो दुनिया से बाहर निकाल दिए। तो गंगा आदि पर रोज स्नान करने जाते हैं, कोई तो नियमी होते हैं, नहर पर के पर जाकर के भी स्नान करते हैं। तुमको बाप कहते हैं ये नियम रखो, बाप को याद करने का, याद का स्नान व यात्रा करो। ज्ञान स्नान भी कराते हैं और योग भी सिखाते हैं, तो बाबा तो दोनों प्रकार की यात्रा कराते। बाप ज्ञान देते हैं, इसमें योग भी और ज्ञान, योग का भी ज्ञान और सृष्टि चक्र का भी ज्ञान देते हैं। योग किसको कहा जाता है, कैसे लगाना है, कहां बुद्धि योग लगाना है, तो योग का भी ज्ञान देते हैं। और फिर सृष्टि चक्र में कर्म क्षेत्र में पार्ट कैसे प्ले करना है वो भी ज्ञान देते हैं। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत लोग देते हैं, योग को जानते ही नहीं है। योग को हठ योग समझ लिए, ऐसे योग आश्रम तो ढेर है, मन मना भाव का मंत्र देंगे लेकिन स्वाय बाप के कोई भी मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है। गीता पढ़ेंगे मंत्र तो देते। अब 84 जन्म का चक्कर पूरा हुआ, फिर नई दुनिया होगी, नया साइकिल शुरू होता है। तुम्हारी बुद्धि में है झाड़ की वृद्धि कैसे होती है, राजधानी स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़े ही आएंगे, ब्राह्मणों का झाड़ भी बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे, प्रजा बनती रहेगी, थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे, सेंटर भी बहुत वृद्धि को पाएंगे। अभी तो हजारों की भेंट में सेंटर खुल गए, प्रदर्शनियां ढेर के ढेर जहां तहां होती रहेंगी, जैसे मंदिर ठिकाने निकलते जाते हैं, मंदिर गुरुद्वारे बढ़ते जाते हैं, वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी, घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी, वृद्धि को पाते जाएंगे। इसलिए आखिर इन चित्रों की छपाई करानी पड़ेगी। ये है मुरली अर्ली 60 की, तो उस वक्त चित्रशाला थी दिल्ली में, तो आर्टिस्ट हाथ से बनाते थे पिक्चर, बहुत पिक्चर्स पहले थी, फिर तो 12 चित्र बाबा ने सेलेक्ट किए थे, तो सेट बनता रहता था। तभी बाबा ने कहा भी प्रदर्शनियां बढ़ानी है तो प्रिंटिंग प्रेस थी, तो आत्म प्रकाश भाई प्रिंटिंग प्रेस वाले वो इंचार्ज थे कृष्णा नगर सेंटर प्रदर्शनी सेट बनवाने में। तो अभी भी तो अपना जो अहमदाबाद के रास्ते पर जाते हैं हाईवे पर, तो वहां बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है। तो बाप कहते हैं आखिरी चित्रों की छपाई करानी पड़ेगी, सबके पास बाप का पैगाम जाना है, तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी। अभी तो आबू में भी अपना जो प्रिंटिंग ये जो चित्र बनाते हैं बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े बनाते हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस में नहीं परंतु एंजल आर्ट है ना, आर्ट गैलरी अलग चीज है और एंजल आर्ट ये डिपार्टमेंट अलग है, जिसमें मशीन से ये सारे चित्र छपते हैं। डेविड भाई ने में तय, उनके साथ और भी साथी हैं। तो आखिर इन चित्रों की छपाई करनी पड़ेगी, सबके पास बाप का पैगाम जाना है, तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। अभी ये प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है तो गांव गांव में दिखाना पड़ेगा। प्रोजेक्टर रात को ले जाते क्योंकि रात स्लाइड शो दिखाने होते थे तो अंधेरे में थोड़ा, या अगर हॉल में भी दिखाना है तो पर्दे लगा। बाबा ने कहा इनको भी अच्छी रीति से यानी एक्सयूज करना है। शिव जयंती गाई जाती है, परंतु वो कैसे आते हैं किसी को पता नहीं है। शिव पुराण में ये बातें नहीं है, ये बातें तुम सुनते हो, सुनने के समय अच्छा लगता है फिर भूल जाते हो। अच्छी अच्छी पॉइंट धारण करनी चाहिए अच्छी रीति, और सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। अच्छी पॉइंट धारण करेंगे तो सेवा अच्छी कर सकेंगे, परंतु सब पॉइंट किसी को धारणा नहीं होती। भाषण करके आएंगे ना, फिर ख्याल में आएगा अगर ये पॉइंट समझाते थे तो बहुत अच्छा होता था। ये तो कॉमन है, प्रोग्राम करने के बाद बुद्धि और एक्टिव हो जाती है। ये पॉइंट भी यूजफुल थी, ये पॉइंट भी यूजफुल थी। अच्छा अर्जुन, ये पॉइंट भी समझाते तो अच्छा था। जिनको देह अभिमान नहीं होगा वो झट बताएंगे, भाषण करके फिर विचार करेंगे, हम सब पॉइंट ठीक समझाई, अपनी चेकिंग करेंगे। ये पॉइंट्स भूल गए, पॉइंट्स कोई साथ नहीं चलनी है, ये सिर्फ अभी के लिए है, ज्ञान अभी के लिए है, सतयुग में तो नहीं रहेगा, खलास हो जाएगा, और ये सृष्टि भी खत्म होने वाली है। जो भी इन आंखों से तो कुछ देखते हो फिर वो सतयुग में नहीं होगा, ये प्रदर्शनी के चित्र भी नहीं होंगे, पर ये दुनिया भी नहीं होगी। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, तुम त्रिनेत्री बनते हो। बाबा आकर ज्ञान दे रहे हैं जो आत्मा धारण करती है, आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। ये कोई को ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कार्य करता हूं। दूसरी बात, बाबा हमको पढ़ाते मैं आत्मा हूं, शरीर द्वारा कार्य कर रही हूं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रखना, इसकी मेहनत, अपने पर अटेंशन देने, बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में भी रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज आया कि आया, तुम जानते हो हमारे राज में क्या क्या होगा। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। पढ़ने वाले को अब मर्तबा याद रहता है, भविष्य में मुझे क्या बनना है, कौन सा पद मिलना है। अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे, वो नामी ग्रामी हो जाते हैं। अभी लिस्ट निकाले, माला बनाए तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने के लिए। भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनको उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए, हमको इन जैसा होशियार बनना है। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी बाप दादा को मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है, इसीलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। सेकंड पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है, डबल कोर्स पढ़ना है, ज्ञान का स्नान और योग की यात्रा, याद की यात्रा करनी और करानी है। वरदान, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना, इसमें शक्ति स्वरूप बनना है। जो भक्ति रूप का कवच, जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं, उन्हें माया कोई, माया का कोई भी तीर नहीं लग सकता। सेंसिटिव नेचर है, जल्दी नाराज होने की नेचर है, जल्दी दुखी हो जाते हैं, तो दिल या अपसेट हो जाते हैं कोमल। इस हिसाब से माया का कोई भी तीर नहीं लग सकता, शक्ति स्वरूप बन गए तो। इसलिए आपके चेहरे, आपके नैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई देवे। चेहरा उदास हो गया, आंखों में से पानी बहने लगा, कमजोर मतलब कोमल है, तो आपके नैन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पास विद ऑनर होने का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से भाग जाएगी। अव्यक्त इशारा, अचल अडोल स्थिति, जैसे साकार बाप ने अथक और एक रस स्थिति का, अथक और एक रस स्थिति का एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे आप बच्चों को भी औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है, सेवा है। सिर्फ वाणी से ही नहीं, सर्विस सिर्फ वाणी से नहीं होती, स्थिति से सर्विस होती है। स्वस्थिति कैसी है? तो समय प्रमाण अब अपनी स्थिति को एक रस बनाओ। ओम शांति।
ओम शांति। जो भाई बहने अभी नीचे से